तो इसी एतबार से मैंने शुरू किया, क्योंकि हो सकता है कि लोग समझें कि ये आइडियलिस्टिक ड्रीमर है और उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि वी हैव टू लुक एट हिस्ट्री एंड फाइंड आउट व्हाट इज द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एपिसोड ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये पता चलता है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और चूंकि ये हम अपनी हिस्ट्रीज में नहीं पढ़ते आजकल, क्योंकि हम यूरोसेंट्रिक हिस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसकी यानी अंदाजा नहीं है लोगों को कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ दिस अकॉम्प्लिशमेंट। सो आई वुड लाइक टू रिव्यू इट ब्रीफली कि अरब जो है वो दुनिया की सबसे बैकवर्ड्स कौम थे उस वक्त। चार मेजर सिविलाइजेशंस थे, ईरान और मिस्र और चीन और रोम। दीज वर एडवांस सिविलाइजेशन, इनके पास टेक्नोलॉजी थी, साइंस था, फिलॉसफी थी, लिटरेचर था, आर्ट्स थे, म्यूजिक थी, हर किस्म की चीज थी उनके पास। वॉर में उनके पास किताबें थी और मैनुअल्स थे और टेक्निक्स थे। अरब्स वर प्रिमिटिव बैकवर्ड्स ट्राइबल पीपल, लिखना पढ़ना नहीं आता था। देवर बारबेरिक पीपल, अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे और एक दूसरे से मामूली बातों पर लड़ते थे। तो फ्रॉम दिस बिल्कुल बॉटम ऑफ द हीप ये क्या हुआ कि दे बिकेम द वर्ल्ड लीडर्स अकॉर्डिंग टू एवरीबडी, यानी ये इस्लामिक बायस्ड अकाउंट नहीं है, न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैव रिटन के From bottom they rose to the top, the position of world leadership, and they maintained that position for more than 1,000 years. There is no comparable incident in all of human history. तो अब ये कैसे हुआ? Do we need to worry about this? Do we need to think about this? यानी maybe there are some lessons we can learn from this. If you think about this, तो where does the सिलसिला वही कहां से शुरू होता है? तो पहली वही जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में बैठे हैं और ही इज लुकिंग फॉर हिज लॉर्ड, ही डजंट नो, दीन नहीं है, अल्लाह ताला कौन है उसे आरफ नहीं है, और सारी अरब कौम भी जाहिल है। वही शुरू होती है इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरमुल लजी अल्लमल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। इसमें बहुत सारे बारीकियां हैं जिसको हम अभी डिस्कस करें तो आधा घंटा तो कुछ भी नहीं, मगर इसमें मोटी मोटी बात यह है कि अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहे हैं इंसान से। पहली मर्तबा ही इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, अल्लाह ताला दिस इज मी, हु इज ही। तो यहां पे अल्लाह ताला के हजारों सिफात हैं, तो अल्लाह ताला कौन सी सिफत को यहां पे लाते हैं? वो कहते हैं कि अल्लाह ताला वो जात है जिसने इंसान को सिखलाया जो कि वो नहीं जानता था, अल्लम अल इंसान मालम यालम। तो एक नॉलेज दी अल्लाह ताला ने उन अरबों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, और ये नॉलेज एक ऐसी नॉलेज थी जिसने उनको वर्ल्ड लीडर्स बना दिया। अब वो नॉलेज कौन सी नॉलेज थी, एंड डू वी स्टिल हैव दैट? दिस इज द रियल इश्यू ऑफ इंपॉर्टेंस। वो हदीस में आया था कि इस्लाम अजनबी बनकर आया था और अनकरीब अजनबी बन जाएगा। तो इस्लाम की नोबडी हैड दैट नॉलेज, और फिर से अजनबी बन जाएगा। तो द ट्रूथ इज कि इस वक्त इस्लाम क्या है वो मुसलमानों को नहीं पता, अगर पता होता तो हमारी ये हाल नहीं होता। मगर जो अजीब बात है वो ये है कि विशोक मुसलमान जो है वो जहल मुरक्कब में मुबतला है। जहल मुरक्कब कंपाउंड इग्नोरेंस कहते हैं अंग्रेजी में इसको। जहल तो ये है कि किसी चीज को ना जानना, और जहल मुरक्कब ये है कि किसी चीज को ना जानना और ये समझना कि मैं इसको जानता हूं। तो इस वक्त चूंकि आम तौर पे मुसलमानों का यह ख्याल है कि इस्लाम तो हमारे पास है ही, हमारी जेब में है, हमें विरास में मिल गया, और अगर इसमें कोई चीज फायदे की होती तो हमारी ये हालत ना होती जो हम आज देख रहे हैं। तो इसके मानी ये कि आज हमें इस्लाम से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आज हमें क्या करना होगा, हमें IMF को फॉलो करना होगा, वर्ल्ड बैंक को फॉलो करना होगा, जो MIT और स्टैनफोर्ड जहां मैं पढ़ा उन लोगों की तालीमात हासिल करनी होंगी। तो हकीकत यह है कि ओवर यानी आई वॉज ट्रेन्ड एट MIT एंड स्टैनफोर्ड, और बहुत अरसे तक मैं उन्हीं की मालूमात को फॉलो करता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाजा हुआ कि शुरू में ग्रेजुअली एंड लेटर मोर के जो कुछ मुझे पढ़ा है वो इग्नोरेंस था, I was not taught knowledge, I was taught ignorance, as posing in the shape of knowledge. ये बहुत खतरनाक बात है जो मैं कह रहा हूँ. यानी what I am saying literally is के at Harvard they are teaching you witchcraft, and that is what is true. मगर to convince you of this will is a big agenda, which is what I would like to undertake. तो अब वो real knowledge हमने उसको पसे पुश रख दिया है, उसको हम study नहीं कर रहे हैं. और जो artificial knowledge है, जो नॉलेज पोजिंग इग्नोरेंस पोजिंग एज नॉलेज है, उसको ही हमने अपना मबूद बना रखा है. एंड वी आर ट्राइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दैट एंड वी आर फेलिंग बिकॉज इट इज नॉट अ बेनिफिशियल नॉलेज. तो इसकी मैं पहले कुछ मिसालें देता हूं आज, जिससे आप शायद ये ज्यादा प्लॉजिबल हो जाए बात. और बात यह है सिंपल सी कि अभी ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, सबने देखा 2007-08 में मैसिव क्राइसिस जिसके असरात अभी तक चल रहे हैं. अमेरिका में करेंटली इट इज द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ होमलेसनेस एंड हंगर. करेंटली मिलियंस ऑफ पीपल आर हंग्री इन अमेरिका विच इज द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री और होमलेस. दीज आर द हाइएस्ट नंबर सिंस वर्ल्ड वॉर टू. और ये कैसे हुआ? ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुआ. और ये जब हुई तो यानी टुक इकोनॉमिस्ट बाय सच अ ब्लाइंड साइड, यानी किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये होने वाला है. बल्कि नोबेल प्राइज विनर्स ने फोरकास्ट किया था कि अब हमने एक बहुत मशहूर आदमी है, लूकस है या साजर, आई थिंक इट्स लूकस हु सेड दैट इन 2005 ही अनाउंस के हमारे पास अब इतना इल्म हो गया है कि वी हैव सॉल्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज टू प्रिवेंट रिसेशंस. अब ऐसा हो नहीं सकता दुनिया में कि रिसेशन आ जाए, क्योंकि वी हैव द नॉलेज टू प्रिवेंट इट, इट्स ऑन द रिकॉर्ड. उसके बाद 2007 में दीज वर्ड्स केम बैक टू हॉन्ट हिम. आई थिंक एब इनिशियो ये बात तो प्लॉजिबल है कि वो चीज जिसको वो नॉलेज कह रहे हैं वो नॉलेज नहीं है. जेफरी सैक्स वॉज द ग्रेजुएट फ्रॉम येल या हार्वर्ड, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, वो गया रशिया में. ही कॉन्फिडेंटली टोल्ड द प्रेजिडेंट के आप ये फॉलो इस पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें और यू विल टर्न द इकॉनमी अराउंड. एंड वट ही कॉल्ड इट वॉज द शॉक स्ट्रैटेजी. उसने कहा कि आप जल्दी से ये फ्री मार्केट यहां पर लागू कर दें और वट विल हैपन एज ए रिजल्ट इज दैट यू विल गेट टू प्रॉस्पेरिटी. मगर उसका क्या नतीजा हुआ? रशियन इकोनॉमी कोलैप्स. एक साल में प्रोडक्शन फेल बाय 50%. तो यानी एंड दैट वाज द नॉलेज फ्रॉम हार्वर्ड. सेम थिंग हैपेंड इन पाकिस्तान बाय द वे. जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में और पढ़ा रहे हैं, विच इज बीइंग टॉट द वर्ल्ड ओवर, विच इज व्हाट आई कॉल वुडू विचक्राफ्ट, सेज द फेमस सोलो ग्रोथ मॉडल, says के development is a process of accumulation of wealth. पैसा जमा करो तरक्की हो जाएगी. अब this has been disproven over and over again in many different ways. महबूबुल हक ने जब इसी पॉलिसी को लागू किया पाकिस्तान में, ही वॉज एक्चुअली इन अ पोजिशन टू वर्क इट, तो प्लानिंग कमीशन बना और ये बाइट बना जिसमें एज द रिसर्च विंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड दे इम्प्लीमेंटेड टू द लेटर द थ्योरेटिकल पॉलिसीज. एंड महबूबुल हक वाज अ शार्प गाय, ही अंडरस्टूड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द पॉलिसी. उसने कहा कि क्या, हाउ इज दिस पॉलिसी गोइंग टू वर्क. एक तो थ्योरी की बात है कि हम इक्वेशन लिखते हैं कि वो वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट होगी, सेविंग्स को बढ़ाना है बेसिकली, तो ये कैसे होगा. ही अंडरस्टूड द इम्प्लीकेशन ऑन द लाइव ऑफ द पीपल एंड ही सेड के इसका यह तरीका है कि हम मजदूरों को काम में लगाएं और उनसे प्रोडक्शन बढ़वाएं, मगर उनको उसको खाने नहीं दें, क्योंकि दैट मनी हैज टू बी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड एंड दैट इन्वेस्टमेंट विल लीड टू एन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ. और फिर हम उसको गरीबों को भी, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ फीलिंग सिंपथी फॉर द पुअर, क्योंकि if we do that, if we feed the poor, then there will be no money left to invest and no growth. So, when he saw the results of that, he realized that it was a mistake. In fact, वो एक बहुत अच्छा पेपर है हमारे फैसल बारी ने लिखा है ऑन द थ्री फेजेस ऑफ थिंकिंग, जिसमें तजुर्बे से फैसल ये महबूब लाल ने क्या क्या सीखा। तो उसके जिंदगी में तीन फेजेस आए। पहले तो वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था, लाइक आई वॉज ब्रेन वॉश टू बी वन टाइम, एंड देन ही रियलाइज देयर वॉज चेंज। उसने फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाई, जिसमें उसने कहा कि और भी चीजें हैं दुनिया में पैसे के सिवा, और उसमें कुछ हेल्थ और कुछ एजुकेशन और ये सब चीजें भी देखनी चाहिए। ओके, दैट वॉज नॉट ऑल एक्चुअली। द फाइनल स्टेज इज द रियलाइजेशन, विच इज अ वेरी सिंपल थिंग, विच इज द बेसिस फॉर द ऑल्टरनेटिव इकॉनमी, इज के growth is for the sake of the people and it will be done by the people. This very simple and fundamental insight is still not present in the minds of the planners and the economists. Ke maqsad growth ka ye nahi hai, yani is waqt jo model chal raha hai wo ye hai ki hum industries factories bana ke kisi tarah se paisa jama kar le taki us paise se gareebon ko khilaye. This is completely a wrong idea, but this is the idea which is at the back of economic policy and planning. So actually the point is, how can we help the people to live? That's all. Agar hum unko support karte hain zindagiyon mein unki, to phir ye log khud is mulk ko develop kar denge. We don't have to do it. It's not that we have to develop the mulk and then give the output to them. It's that we have to help them live decent lives. If we provide support for them, development will be done by them, all of the things that we are looking for. It's a complete reversal, and it is not any, what I'm saying sounds so simple, everybody can understand it, and yet this is not the basis of what is the planning and policy. It's actually the opposite. It's always any jo baat chal rahi hai wo abhi bhi yahi chal rahi hai, government kisi tarah se mulk ki tarakki karegi aur us tarakki se log fayda uthayenge. This is not the right way to think. So actually, yahan par we have to come to the understanding that what is the nature of economic knowledge. Ab jab main ye keh raha hu baat ke voodoo and witchcraft is being taught in Harvard, so then I have to explain why this is so. Yani how can it be? Ek baat ye hai ke yani ye log bewakoof to nahi hai, they have obviously invented all sorts of technology. So if they are teaching something, there is a reason for it. It's not that, and there is a reason for it. It's not that it's arbitrarily any old thing that is being taught. Actually, jo deeper analysis hai, it says that knowledge is very strongly linked to power. So if a type of knowledge supports the interests of power, it will be widespread. If a knowledge supports the poor, it will not be. A very simple example hai orphan drugs ka, ke there are certain drugs which are known to cure diseases, magar jo target population hai wo gareeb hota hai, so these drugs don't get manufactured because it cannot be paid for by the people who are having the disease. So in spite of the fact that there is a cure which is known, the drug is never manufactured because it doesn't pay. So the knowledge that is available in our in the environment, the knowledge which is taught, which is passed on, will support the interests of power. It's a very different concept of knowledge from the one that I was taught. Knowledge is objective truth and it is invariant and doesn't have to do with people. Yani it's not who is saying what, but what is being said, and you have to evaluate whether it's true or false. Aisi koi baat nahi hai. But this is a difficult thing. So the point is, knowledge is actually a battle. Yani that one kind of knowledge supports one kind of power, another kind of knowledge supports other kind of power structures. For example, even this idea ke hame koi chara nahi tha ke IMF ka loan len, we analyze the effects. Ke suppose ke default ho jaye, to default ho jane se जो एलीट अपर क्लास है उसको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हमारी लग्जरी इंपोर्ट्स बंद हो जाएंगी. अवाम को कोई असर नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट जीरो. तो द लाइव्स ऑफ द पीपल विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस, बट बेसिकली इट्स नेसेसरी बिकॉज द पीपल हु आर रनिंग पाकिस्तान विल बी वेरी बैडली अफेक्टेड, ऑल्दो दे आर लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, बट 99% कुड बेनिफिट. सो एनीवे, सो द आइडिया दैट दिस इज अ पीस ऑफ नॉलेज कि पाकिस्तान cannot survive without getting a loan. This is a piece of knowledge, but this knowledge is very strongly influenced by the power. तो इसी तरह से बहुत सारी बातें जो चल रही हैं इस वक्त के, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए, डिप्रिशिएशन ऑफ करेंसी होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, लिबरलाइजेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड मंत्रा विच वर्ल्ड बैंक हैज बीन चैंटिंग फॉर 50 इयर्स. अभी 2002 में हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट रॉड्रिक ने एक आर्टिकल लिखा इवैल्यूएटिंग द एक्सपीरियंस एंड शोइंग दैट इट्स अ कंप्लीट फेलियर, यानी ये सारी पॉलिसीज जिसको वॉशिंगटन कंसेंसस कहा जाता है, they have performed miserably all over the world, including the person jisne is loves ko coin kiya tha, Washington consensus, he has agreed ke this doesn't work. Still abhi bahar mein hamare yahan do teen saal pehle ko aaya tha ki Washington consensus kitni zabardast cheez hai, yani things which have been discarded, evaluated and discarded in the west are now coming into fashion here. To baat ye hai ke the real parallels, मैंने एक मिसाल तो दी आपको ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की उसके, और फिर जो दूसरी मिसाल है हमारे जमाने इस वक्त, इस जमाने में ओवर द पास्ट 50 इयर्स द ओनली कंट्रीज विच हैव मैनेज्ड टू मेक स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस आर द ईस्ट एशियन कंट्रीज, द ईस्ट एशियन मिरेकल, जिसपे वर्ल्ड बैंक ने भी एक किताब छापी और उसने कहा कि ओपनिंग इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि दे डिड नॉट फॉलो एनीथिंग विच वी एडवोकेट, बिल्कुल उन्होंने एतराफ किया है कि हम ये कहते हैं और ये इसका उल्टा किया, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट मैनेज नहीं करे, इनकी गवर्नमेंट से मैनेज किया, हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं हो, इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी अख्तियार किया, इसी तरह से यानी देयर इज अ लिस्ट ऑफ 8 or 9 मेजर रिकमेंडेशन जो कि हमने सीखे थे स्टैनफोर्ड में कि दिस इज हाउ यू शुड रन इकोनॉमीज एंड दे फॉलो नन ऑफ देम एंड दे अचीव द मिरेकल. And at the same time, all over the world, these policies which were recommended were implemented in hundreds of countries. और यही जो study है Roderick की, उसमें कहा है कि लोगों ने इस पे ये कहा है कि the reason that these Washington consensus policies failed was that they are not actually implemented. People tried to do that, but they didn't. He said, this is wrong. बहुत seriously और बहुत significantly implement हुई directly लोगों ने किया exactly according to the theory. They just didn't bear fruit. So it's not that they were not tried as yani an excuse. So yani these policies which we are trying to follow and implement have been tried and are known to be failures. Policies which were followed and are known to be success are not known anywhere. Is waqt Harvard mein koi bhi East Asian miracle ko nahi padhata hai, na hamare mulk mein. We are teaching economics in hundreds of universities. Nobody talks about the successful model for growth. In the world where abhi Eugene Fama ko Nobel Prize mila hai. Eugene Fama has been named as one of the people who is the most responsible for the global financial crisis. Kyunki uski jo wrong theories thi about rational expectations, according to them this global financial could not possibly happen. And because of this, yani people kept saying, basically what he says is ke jo prices hain wo accurate reflection of the value of the firm hoti hain. This is what rational expectations mean. To agar wo accurate thi to they couldn't collapse like this. And many people warned ke bhai ye jo stock market jo hot ja raha hai ye galat hai, there is something wrong, but they were ignored kyunki rational expectations theory, which was dominant at that time, I was actually one of the victims of that also. It said that if the prices are rational, they can't collapse. So people confidently rejected those naysayers. Ke tum log aise doom gloom forecast kar rahe ho? According to our theories, this cannot happen. Jab phir it happened, then everybody was taken by surprise. So the Fama, who is responsible for the global financial crisis, is getting a Nobel Prize. Achha, East Asian economist jinhone world's yani most amazing miracle performed, usme se ek aadmi ko bhi abhi tak Nobel Prize nahi mili hai. Isi tarah se ye yani Friedman Nobel Prize winner engineered catastrophe in Chile, uske ek gang thi jo ke economists thi, which were known as Chicago Boys. and they ran Chile's economy for 20 years with disastrous results. Puri economy tabah ho gayi. Magar he got the Nobel Prize. So what I'm saying is ke the knowledge which is recognized and acknowledged and honored is disastrous and catastrophic. And there is an alternative. Ab asal mein
please go ahead.
Acha, time to so what I am saying is that the knowledge that we are taught is tied to power interests. And now I would like to come to solutions. So basically, you know, one of the favorite paradigms and dominant ideas is called export-led growth. This is one of a cluster of package of ideas. Export-led growth kya hai ki hum exports karenge to isse hamari economy tarakki karegi. Isse hum foreign exchange kamayenge. So, what does it mean? It really means, actually, so if I want to take some time, then let me go back a little bit and put things in context. To put things in context, we have to go back to the colonial system, jismein we were a colony of Great Britain, and a very large amount of money, 30 million pounds sterling, was taken from India and transferred to Britain every year. Ab ye sawal pucha jata hai ki why are we underdeveloped? Aur is pe maujood hai bahut sari kitabe hain. Aur isme maslan ye aata hai ki hum log bewaqoof hain, hum log kahil hain, hum log corrupt hain. Ye sari baatein, yani these are all written down by a historian. It's real. Kale logon ke paas dimag nahi hote. Seriously. Yani mazhab ke khair lagte hain. I can show you books which argue this thesis. Europeans ke paas wahid eklauti ability hai to do science. Other people are yani mind. Aur hamare log mein se mutasir, hum log is baat ko dohrate rehte hain. Halanki is koi haqeeqat nahi. So lots of books have been written. But ek baat hai jo sirf ek historian ne likhi hai, Stavrianos naam hai uska, uski kitab jo is waqt out of print hai, and it's unique. He says ki bhai dekho, kisi zamane mein hamare paas paise the. Actually India was much richer than England at the time that invasion took place, and it was more technologically advanced, more industrialized. We had industries, hamare logon ko pata hi nahi apni history, industries of shipping industry and glass blowing industry and textile industry was the most advanced in the world. And in addition to that, we had many other technologies and which were very advanced. So it was not ke jo Eurocentric picture of history hai wo ye kehti hai ke we were primitive, hum log darakhton mein rehte the aur likhna padhna aata nahi tha, angrez aaye unhone tehzeeb yaftah se tehzeeb sikhlai aur ye sab jo hai wo this is the picture which actually the fact is ke we had functioning systems of health and education and welfare where pure Hindustan mein, and this has been true throughout Islamic history, that anybody, any child who was talented and who wanted education could get an education. It was not as aajkal ki zehniyat mein ye baat hai ke jo taleem chahta hai to wo apne paise khare kare pehle, uske baad fir wo taleem hasil karega. Only those people who have the money are entitled to an education. If somebody is poor, he is not entitled to an education. This is the social consensus, effectively practical. This, yani, throughout Islamic history, yani, this is the most key point, yani, jo puri baat main kehna chahta hu, usme se ek baat agar hum log take away karna chahe, to wo ye hai ki agar hum taleem ko kisi tarah se aam kar de, to that will be the most fundamental and most important long run. This is the way to develop the potential of the people. बाकी सारी चीजें खाने के बगैर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फूड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनर्जी द ओनली थिंग इज द ह्यूमन बीइंग्स अगर उनको इल्म मिल जाए तो दे विल चेंज द वर्ल्ड फिर वो खाने का भी इंतजाम कर लेंगे और एनर्जी का भी इंतजाम कर लेंगे तो थ्रू आउट इस्लामिक हिस्ट्री एजुकेशन वॉज अवेलेबल टू एवरी चाइल्ड हु कुड मेरे वालिद साहब बतलाते हैं कि इन हिज टाइम दी रिच पीपल हैड टू कीप अ रूम फॉर द स्टूडेंट्स उनके पास कमरे होते थे जिसमें तलबा को रखते थे उनका यानी दैट वाज फोर्स्ड यानी सोशल ऑब्लिगेशन के एवरी रिच पर्सन मस्ट सपोर्ट समबडी टू स्टडी इट कुड बी एनीबडी यानी सो बेसिकली इट्स नॉट के आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट माई चिल्ड्रन और दूसरे के बच्चे उसकी एक्चुअली ऑल ऑफ द नेशन चिल्ड्रन आर माई चिल्ड्रन एंड इट इज माई इट्स आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम तो वी हैव टू तो ये जो कॉलोनियलिस्ट आए और इन्होंने हमारा पैसा ले गए एंड दे क्रिएटेड दिस सिस्टम I'm saying that this was the case throughout history, but when colonization took place, then our native system, jo hamare awqaf the, basically our education was funded by waqf and also health. Anybody, there was no question. Kisi zamane mein ye baat ke ek aadmi medicine study karega isliye ki wo kisi gareeb ki bimari se fayda uthakar paisa banaye. This was such a zaleel thought, लोग कहते कि ये कैसे हो सकता है यानी इंसानियत से गिरा हुई बात है आज ये इस बार आम है यानी my wife teaches in Shifa and they had an interview for the incoming students. तो epidemiology का एक standard question होता है कि भाई अगर शहर में वबा फैल जाएगी तो क्या असरात होंगे they asked this question of one of the students who was being in. This is a real fact, it's shocking but it's true. तो वो लड़के ने थोड़ी देर सोच के कहा कि डॉक्टर्स की आमदनी बढ़ जाएगी सोचने की बात है तो जहन कहां पे गया यानी बट दिस इज द कॉमन थिंग द सैड थिंग इज के आज डॉक्टरी इसलिए नहीं पढ़ी जाती है कि हम इंसानों की खिदमत करें और नहीं इसको कोई अजीब चीज समझा जाता डॉक्टर इसमें कमाई ज्यादा हो जाएगी मेरी और अब यानी इतना ही आम हो गया कि मैं जब कहता हूं तब लोग रियलाइज करते हैं कि अच्छा दिस इज समथिंग स्ट्रेंज वरना इट्स सो कॉमन के हाँ ये तो है इसमें क्या मजाक है दिस इज नॉर्मल एंड नेचुरल सो थिंग्स विच आर वेरी अननेचुरल एंड एबनॉर्मल हैव बिकम नॉर्मल टूडे एंड दिस हैज टू बी रिवर्स्ड तो जो सिस्टम आया उसमें यही हुआ कि आप अगर एजुकेशन चाहते हैं तो आप पैसे लाएं आप हेल्थ चाहते हैं तो आप पैसे लाएं दिस इज एग्जैक्टली यानी अपोज टू द सिस्टम दैट यूज टू एग्जिस्ट where education was considered not it's not the responsibility of the student to pay for it it's the responsibility of the society to provide education health and other basic amenities to the people and in fact that's the major function of the government to jo colonialism se jo baat paida hui basically ye hui ke तो स्टैब्रियानस ने यह कहा कि देखो ये डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट की बहस चल रही है कि वाई आर सम कंट्रीज पुअर एंड वाई आर सम कंट्रीज रिच इस टाइटल की एक किताब है और उसमें एक लंबी चौड़ा फलसफा बघारा गया है तो उसने कहा कि भाई स्टैब्रियानस ने कहा कि ये बहुत सिंपल बात है से पहले हिंदुस्तान अमीर था और इंग्लैंड गरीब था फिर उन्होंने हमारे पैसे ले गए अपने पास ले गए अब वो अमीर हो गए गरीब हो गए इसमें क्या यानी सोचने की बात है In the beginning of the 20th century, Europe had control over 90% of the globe. And in the process of the control, they exploited the world to the max. Now, this is a different question. How did they acquire this control? But the fact is that there is no deep mystery about development and underdevelopment. All of the resources of all of the worlds were converted to resources for the USA. इसकी जो सीरियस और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है इश्यू है जी पीपल व्हेन यू टॉक लाइक दैट यू से आप तारीख में जा रहे हैं यू शुड लुक एट योरसेल्फ वगैरह वगैरह दिस इज अ वेल नोन आर्ग्यूमेंट दैट आई एम मेकिंग बट एक्चुअली देयर इज अ रीजन टू थिंक अबाउट दिस रीजन इज दैट एक सिस्टम था जो फंक्शनिंग था यहां, वो सिस्टम तोड़ दिया गया. बेसिकली द कॉलोनीज वर कन्वर्टेड, यानी वी हैड अ रिच एंड वैराइड इकोनॉमी. कहीं पे टेक्सटाइल्स हैं, कहीं पे शिप बिल्डिंग है, दे वर डाइवर्सिफाइड एंड बेसिकली इट वाज अ कलेक्शन ऑफ सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज एंड दिस इज द मॉडल दैट वी नीड टू गो टुवर्ड्स. यानी जो इकोनॉमिक थ्योरी है इट इज वायलेंटली अगेंस्ट सेल्फ सफिशिएंसी. जो थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज है वो कहती है कि हम लोगों को तो कपास उगानी चाहिए और उसको इंग्लैंड में जाके उसका टेक्सटाइल बुनना चाहिए और फिर वो वापस आए यहां जो ताकि हम उसको पहने, क्योंकि इंडस्ट्री में इंग्लैंड का कंपेरेटिव एडवांटेज है और उगाने में हमारा कंपेरेटिव. हम रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करें और वो उसको मैन्युफैक्चर करें, ये कंपेरेटिव एडवांटेज की थ्योरी, विच इज कंप्लीटली बोगस, ऐसी कोई बात ही नहीं. इसकी इस थ्योरी को इंप्लीमेंट करने के लिए जब जब भी इंडिया में प्रपोजल्स आए और बहुत सारे गवर्नर जनरल ने प्रपोज किया कि हम यहां थोड़ी सी इंडस्ट्री लगा दें, तो उसको वायलेंटली अपोज किया गया कि हमारा काम नहीं है इंडिया को डेवलप करना, हम तो इसकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं. इंग्लैंड वालों ने उसको मना कर दिया. तो बेसिकली फिर वो गांधी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और फिर वो खदड़ वाली स्कीम चलाई. इसी तरह से नमक का मामला हुआ और बहुत सारी चीजें हुई इस तरह की कि इंग्लैंड जो है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ब्लॉक कर देता था, तो इंडस्ट्रीज यहां डेवलप नहीं हो सके. इसके बरक्स तो बेसिकली जो जो कॉलोनियल, यानी इट वाज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ 30 मिलियन पाउंड, वो तो खत्म हो गया. जो असल बात थी वो ये है कि एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वजूद में आया जिसमें वी आर रॉ मटेरियल सप्लाई, वी नॉट जस्ट पाकिस्तान, ऑल ऑफ द सो कॉल्ड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज अ रॉ मटेरियल सप्लायर एंड दे आर द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस. इसमें से हाउ द ईस्ट एशियन पीपल मैनेज टू एस्केप दिस, उसकी अपनी लंबी स्टोरी है एंड इट्स वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट स्टोरी टू लर्न, बट आई डोंट हैव द टाइम टू टेल इट हियर नाउ. कि हाउ डिड दे एस्केप द ट्रैप. जापान में एक छोटी में जो हुआ वो अमेरिकन ऑक्यूपेशन में उन्होंने दे मैनेज टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमी एंड ग्रो. हाउ डिड दे डू दैट, दे हैड अ सीक्रेट मिनिस्ट्री, अ सीक्रेट मिनिस्ट्री जो कि अमेरिका के ऑर्डर्स आते थे कि आपको ये करना है. दे वुड एनालाइज एवरी सिंगल ऑर्डर एंड दे वुड से कि अच्छा ये ऑर्डर जो ये हमारे लिए मुफीद है इसको लागू कर दो, ये ऑर्डर हमारे लिए नुकसानदेह है. दे वुड ऑल गो आउट एज नोटिफिकेशन, मगर दे वुड बी अ प्राइवेट वर्ड के पास कि इसको इन्फोर्स नहीं करना है. ठीक है, वो किताबों में है रूल, मगर कोई इसको तवज्जो नहीं दो. और बाद ऑर्डर्स में वो कहते हैं इसको मॉडिफाई कर दो तो ये हमारे लिए मुफीद हो जाएगा. तो देयर वाज अ सीक्रेट, अब उसमें वो लोग अपने मुल्क की मफाद चाहते थे, तो दे मैनेज टू ग्रो द इकॉनमी अंडर द नोज ऑफ द अमेरिकन बाय दिस सीक्रेट. तो कोरियन स्टोरी इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, इसलिए आई वोंट टेल दैट. तो द पॉइंट इज के वी आर इन द सेम सिचुएशन एज जापान, वी आर अंडर ऑक्यूपेशन. तो जो करेंट न्यू कॉलोनियल स्ट्रक्चर है इट इज बिल्ट ऑन डेट. दिस इज रिलेटेड टू व्हाट द प्रीवियस स्पीकर टॉक अबाउट. इस वक्त इन द पास्ट 10 ईयर्स मोर देन $50 बिलियन हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पुअरेस्ट कंट्रीज टू द रिचेस्ट कंट्रीज. व्हाई एंड हाउ, यानी कॉलोनियलिज्म भी यही होता था कि गरीब ममालिक को एक्सप्लॉइट करके उनकी रिसोर्सेज जो अमीर ले जाते थे. आज कॉलोनियलिज्म खत्म है, अपेरेंटली वी आर अ फ्री नेशन. सो द मैकेनिज्म दैट इज करेंटली इन यूज इज डेवस्टेटिंग लीस्ट सटल. और उसका एक तरीका, देखो इन्होंने सोचा जो कॉलोनियलिस्ट पावर्स है इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू गो एंड इम्पोज टेक आवर ओन आर्मीज एंड पुट आवर ओन पीपल एंड इट्स वेरी इजी टू बाय पीपल इन द ईस्ट. तो अब जो हमारे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो हमारे जैसे लगते हैं, दिस मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट देम, क्योंकि वो पहले तो पहचान लेते कि ये गोरा आदमी है, अब तो वो मैकॉलेज कोट इज वेरी ब्यूटिफुल परफेक्ट कि वो लोग होंगे जो उसको मेरे ख्याल में आजकल नौजवान मैंने कोकोनट की इस्तेलाह समझी थी ब्राउन ऑन द आउटसाइड एंड व्हाइट ऑन द इनसाइड तो कोकोनट क्लास इज इन पावर तो इफ यू थिंक अबाउट द कोकोनट क्लास तो यू विल सी के दे हैव अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज दे देयर डॉग्स ईट बेटर देन द एवरेज पाकिस्तानी तो द डॉग्स गेट बेटर हेल्थ ट्रीटमेंट देन द एवरेज पाकिस्तानी तो ये यानी कोलोनियलिज्म नेवर एंडेड एक्चुअली अब इस क्लास को सैलरीज मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स फ्रॉम द वेस्ट वो लोन्स आते हैं अभी वो सिंध का जो हफीज बाश हफीज शेख अब्दुल हफीज शेख ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन हम लोग साथ रहे थे हमारे एक ज्वाइंट पेपर भी है उसने बताया कि जब मैं वहां सिंध में मिनिस्टर लगा तो देर वर 150 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट फॉर विच वी आर रिसीविंग फंड्स मैंने सबको एग्जामिन किया उनमें से एक भी कंप्लीट नहीं थी दे हैव बीन गो एंड सम ऑफ देम वर रियली रिडिकुलस प्रोजेक्ट्स लाइक सहरा के बीच में एक 300 बेड हॉस्पिटल बनाना है और क्या इस तरह की यानी पगली पगली प्रोजेक्ट्स थी उसके लिए बेशुमार पैसे आ रहे थे कहां जा रहे थे वेल वी ऑल नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन तो बेसिकली सैलरीज आर पेड इन द फॉर्म ऑफ डेट फिर उसका जो इंटरेस्टेड पेमेंट है द जॉब दैट द एडमिनिस्ट्रेटर हैव टू डू इज टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द पीपल एंड डिलीवर टू द मास्टर्स तो अब इन द लाइट ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू कॉलोनियल स्ट्रक्चर देन यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज इश्यूज वाई आर दीज थिंग्स हैपनिंग विच सीम टू बी एनी वाई आर वी मेकिंग पॉलिसीज विच आर डायरेक्टली ऑपोजिट टू द मफाद ऑफ द पीपल यानी वेलफेयर ऑफ द पीपल इज वही बात है कि यानी ग्रीस वाले नहीं करने दे रहे हैं और यानी अमरीका में जब they stopped they defaulted in their loans and there are many things jab east asian crisis hui to jo policies unhone recommend ki they are the exact opposite of the policies that were adopted in the usa kyunki jab east asian crisis hui iske paas iski economies collapse karni to ab do options the या तो यू टेक केयर ऑफ योर पीपल एंड यू से डिफॉल्ट ऑन योर फॉरेन लोन्स या यू एक्सप्लॉइट द पीपल यू कट योर डेवलपमेंट यू कट हेल्थ एंड यू पे द फॉरेन लोन्स तो IMF ने कहा कि फॉरेन लोन्स पे करो जब अमेरिका की बारी है तो उन्होंने कहा कि अपने पीपल को सपोर्ट करो तो एंड दैट्स नेचुरल और ईस्ट एशिया में भी हुआ कि मलेशिया वाले ने इनकार कर दिया क्या कि वी आर नॉट गोइंग टू go against Indonesia and accept kar liya to Malaysia recovered very fast Indonesia took a long time to recover to is tarah se is waqt yani the issue is ke it's not a question of devising some new and miraculous theory which is requires Einstein the issues are very simple if we divide एक्चुअली यानी दिस इज समथिंग विच आई डिड नॉट लर्न एट स्टैनफोर्ड अगर हम किसी इकोनॉमिक पॉलिसी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो उसका बहुत सिंपल तरीका है और सिंपल तरीका यह है कि लुक एट इट्स इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल दैट्स ऑल यू डोंट लुक एट कि कितना पैसा आएगा ये FDI ये एक्सपोर्ट लेड दीज आर ऑल इल्यूजन्स हमारा जो सबसे बड़ा मार्केट दिस इज एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से मैं इस बात पे गया था एक्चुअली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉलोनियल मेंटालिटी कि हम गुड्स मैन्युफैक्चर करें दूसरों के लिए ये हमारे पास करोड़ों अवाम है उसके लिए क्यों हम ना मैन्युफैक्चर करें दिस इज अवर बिगेस्ट मार्केट बट वाई दे आर नॉट ए मार्केट बिकॉज दे आर वेरी पुअर तो हाउ अबाउट हेल्पिंग देम एंड अलाउइंग देम टू अर्न इनकम इफ दे अर्न द इनकम दे विल बी आवर बिगेस्ट मार्केट्स चाइना में ये हुआ इंडिया में ये हुआ दे हेल्प देयर अवाम टू डेवलप एंड देन वी डोंट नीड फॉरेनर्स ना हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ना हमें एक्सपोर्ट्स की जरूरत है वी हैव अ इकोनॉमी विच इज सेल्फ सफिशिएंट हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि इट्स अनबिलीवेबल. यानी वी आर अ रिच नेशन बाय ऑल यानी नेचुरल कैलकुलेशंस. ये पॉवर्टी जो है ये गुलामी की वजह से है. तो जो बात अब मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा अब तो ये फिलहाल नजर आ रहा है कि ठीक है हम जकड़े हुए हैं और जंजीरों में बंधे हुए हैं. व्हाट कैन वी डू. सो नाउ आई वांट टू कम इनटू द एरियाज वेयर एक्शन कैन बी टेकन विदाउट नीडिंग यानी सेंट्रलाइज्ड एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन. तो बेसिकली इशू ये हुआ कि वेस्ट में जो इकोनॉमिक थ्योरी डेवलप हुई दो शाखें हैं यू नो अबाउट. वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. असल में बात यह है कि इन अ सेक्युलर सोसाइटी इट इज अस्यूम्ड के पीपल आर नॉट वर्किंग टूगेदर फॉर अ कॉमन गोल एंड दैट इट्स नॉट पॉसिबल. क्योंकि उसमें यह होता है कि बहुत सारे मजाहब हैं एंड समहाउ यू हैव टू लर्न टू लिव टूगेदर बट द पॉसिबिलिटी के वी विल ऑल वर्क टूगेदर फॉर अ कॉमन गोल दिस नॉट प्रेजेंट. सो इट्स अस्यूम्ड. तो फिर एक होता है इंडिविजुअल लेवल दैट्स माइक्रो कि एवरी वन वर्क्स फॉर हिमसेल्फ. और फिर अगर कोई इज्तमाई काम करना है तो फिर वो गवर्नमेंट करेगी. देयर इज नो इंटरमीडिएट लेवल. तो द रूम वेयर वी हैव एक्शन इज द मेसो इकोनॉमिक्स व्हिच डजंट एग्जिस्ट व्हिच इज नॉट विचक्राफ्ट. मेसो इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट लेवल इकोनॉमिक्स इज द प्लेस वेयर एक्शन कैन बी टेकन बाय अस एज इंडिविजुअल्स एज सिटीजन एज कंसर्न्ड पीपल. तो देयर देयर इज अ लॉट ऑफ रूम. और ये बात अल्लाह ताला के पैगाम में भी है. हम लोग देखते हैं यहाँ पे 50-60 लोग बैठे हैं तो हम क्या कर सकते हैं. अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है कि एक आदमी को तुम कत्ल कर दो तो ऐसा है कि सारी दुनिया को कत्ल कर दिया और एक जिंदगी को बता दो तो ऐसा है कि सारी दुनिया को बचा दिया. तो दिस इज नॉट अ एग्जैजरेशन और अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट. दिस हैज अ मीनिंग. मीन्स दैट इनसाइड एवरी ह्यूमन बींग अल्लाह ताला हैज पुट द पोटेंशियल टू चेंज द होल वर्ल्ड. तो इस पोटेंशियल को कैसे रियलाइज किया जाएगा. उसका सबसे पहला मसला यही है कि जो लैस अल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के पास वही कुछ है जिसके लिए वो स्ट्राइव करता है. आज हम लोगों ने अपने आप को खुद ही बहुत सस्ता कर दिया है. आज मैं अपने जब स्टूडेंट्स को लेक्चर करता हूं तो आई टेल देम कि यू हैव बीन टॉट दैट यू आर कमोडिटीज फॉर सेल एंड दिस इज essential part of the indoctrination that is part of the Western education. You are commodities for sale. जब तुमको डिग्री मिलेगी तो तुम्हारे ऊपर bids होंगी और you will sell yourself to the highest bidder. You will not ask कि तुम्हें क्या काम दिया जा रहा है. जैसे कि अगर मुझे मल्टीनेशनल हायर कर रहा है 100,000 के लिए तो बस टेल मी वॉट टू डू. आई डोंट यानी एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग द सैलरी. चुनाचे एक आदमी मुझे मिला पाकिस्तानी निजात मगर फॉरिनर आया हुआ था. कह रहा था मुझसे कि look, I know what I'm doing is very harmful for the country. But what can I do? I'm getting good pay and if I don't do it, somebody else will do it. So, ye jazba jo hai na, ye bahut khatarnak hai. I am a commodity for sale. I have to tell them, I teach them that look, hamara deen ye samjhata hai ke all of the gold in the world cannot buy you. Every human being is infinitely precious. So, you are what you believe in and what and you have to raise your vision. Aaj jo hamare talba mein jo vision hai wo yehi hai ki hum apna ghar bana le, shaadi ho jaye, khana ke daal roti mein itne zyada ambitious nahi hai hum log. We don't want mahal or don't want Mercedes Benz. Suzuki ho jaye to kafi hai aur daal roti chale aur betiyon ki shaadi ho jaye, ladkon ki taleem ho jaye, isse zyada hum ek insaan kya chahta hai. So this is yani according to our vision, tu hi nada chand kaliyon par banat kar gaya varna gulshan mein ilaaje tangiye dama bita. If we live for a big goal then we can have a big impact. To agar hum kahenge theek hai meri jaan bhi fana ho jaye aur mera khandan aur mera karobar sab tabah ho jaye magar meri jaan ki wajah se zindagi shamma ki surat khuda yaar meri uski wajah se duniya mein ujala ho jaye to phir Allah Ta'ala will use us to create a big impact. So the first thing is to yani first thing is to get rid of this yas, this hopelessness, this spirit ke kuch nahi ho sakta ji, sare Pakistan mein har insaan corrupt hai aur har cheez kharab ho chuki hai aur ye hai aur this kuch nahi ho sakta, which I've heard many. This is itself a very wrong knowledge, and this is actually meant, this is part of the desired effect of colonialism. Ke wo log milke bagawat na kare. So only if we believe in ourselves and in our potential to change the world, then we can do something. So pehli thing is to reacquire lost confidence. Ye idea ke hum log jungle mein rehte the, bandaron se descended hain aur wo log civilized hain, this is really very harmful idea which is very widespread. I remember ke jab main MIT pahuncha tha, I felt ke ye to gore log hain, they are very smart, I will not be able to, maybe I will not be able to compete with them. But later I realized that it was not the case. So anyway, the fact is ke ye self-confidence ki pehli step hai. Phir dusri baat jo hai, wo ye hai ke the action plan has to be, and if everyone does what is in his power, then we can change the world. Ek latifa hai ke ek majlis mein log apni apni baatein kar rahe the, kaise unki biwiyon ne unko sataya hua hai. Ek aadmi ne kaha ki nahi, mere ghar mein to sirf meri baat chalti hai, sare bade bade masle main hal karta hu, meri biwi mamooli baaton pe faisla karti hai. Sab log bahut impressed hain, acha tum kya karte ho? देखो, अगर फैसला करना है कि IMF लोन की क्या कंडीशनैलिटी होनी चाहिए, इसके मैं फैसला करता हूँ. अमरीका इराक वार होनी चाहिए कि नहीं, अफगानिस्तान से विड्रॉल होना चाहिए कि नहीं, यूरोप में क्या हो रहा है, ये सारे फैसले जो बड़े बड़े हैं वो मैं करता हूँ. बाकी ये छोटी मोटी चीजें, घर में क्या पकेगा, बच्चा कहाँ तालीम पाएगा, शादी कहाँ होगी, ये सब मेरी बीवी करती है. ये छोटी मोटी चीजें उनके हवाले करती है. तो दिस इज एग्जैक्टली आवर सिचुएशन के हम लोग बड़ी बड़े चीजें के काला बाग डैम बनेगा कि नहीं बनेगा, इन सब के फैसले तो करते हैं, मगर जो हमारे महल में करने का काम है वो नहीं करते. तो अगर जो जो की है वो इस्लाम में, वो है नेबरहुड, कम्युनिटीज, पर्सनल कॉन्डक्ट, इंटेग्रिटी. हम अपने बच्चों को तो इंटेग्रिटी सिखला सकते हैं, और हमारे महल्ले में अगर कोई गरीब है, खाने नहीं खाता है, तो इस्लाम कहता है कि अगर आपके 40 घर इधर उधर कोई भूखा है तो आपकी इबादत नहीं कबूल होती है. मगर तो हमारे अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर दें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाए, अगर हमारे महल्ले में कोई अनएजुकेटेड पर्सन है तो क्या हम उसको नहीं पढ़ा सकते? अगर हर आदमी यहाँ पे 10 आदमियों की जिंदगी बदलने का फैसला कर ले, तो उसके पास केपेबिलिटीज भी हैं, और उसके पास यानी ही हैज द रिसोर्सेज, ही और शी हैज द रिसोर्सेज टू डू दैट. तो ये जो करने वाले काम है वो हम नहीं कर रहे हैं. तो जो जो शुरू होता है काम, वो कम्युनिटीज, मैसिव इकोनॉमिक्स जो है, इट्स बिल्ट ऑन फैमिली. दिस इज द रियली मोस्ट क्रूशियल आइटम जो कि हमें करने का है. राइट, ओके. सो बेसिकली फैमिलीज, नेबरहुड्स, कम्युनिटीज, फैमिलीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड करेंटली. अमेरिका में हो चुका है ये, एंड इट हैज हैड ट्रेमेंडसली हार्मफुल इफेक्ट्स, एंड द सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन हियर, एंड वी मस्ट बी अवेयर. दिस इज वेयर द अटैक इज, दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द एनर्जी शॉर्टेज. द फैक्ट है पाकिस्तान में सेकेंड मोस्ट पोर्नोग्राफी देखी जाती है. दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल टू द चिल्ड्रन एंड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फैमिली. एंड इफ द फैमिली ब्रेक्स डाउन, देन बेसिकली द चिल्ड्रन आर द जनरेशन ऑफ द फ्यूचर. And this is what has happened in the West. The family has broken down, and it has led to a tremendous amount of harm, which is recognized. So we have to take active steps to protect the family. We have to understand that there is an attack. Abhi to threat bhi nahi nazar aa rahi hai. Then we have to protect the social capital, the neighborhoods, build communities. I teach my students ke, look, it's not the amount of money you earn, it's the amount of number of friends that you make. That's going to make your life different. Yani if you have more deep and sincere friends, you will be happier. The long-term happiness is pretty dependent. It's not on the amount of money you earn. The study after study shows that money is completely uncorrelated with money, with happiness after a certain level. Yani basic needs ki baat dusri hai. So we have to build social capital, we have to build communities, we have to act to create communities, to create social networks. And this is where we can work unopposed, because this level pe soch nahi hai. And in the government, and nobody can स्टॉप इसके भाई हम महल्ले को जमा करें और उसमें तो इफ वी क्रिएट रिस्पॉन्सिबल इफ वी क्रिएट ग्रुप्स बेसिकली द पावर लाइज इन ग्रुप्स नॉट इन इंडिविजुअल्स इफ वी कैन क्रिएट ग्रुप्स हु आर वर्किंग टूगेदर फॉर चेंज एंड स्मॉल ग्रुप्स देन दिस कैन प्रोड्यूस ड्रामेटिक चेंज सो लेट मी स्टॉप हियर. Thank you.